18 अगस्त दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। तुर्की में 38,000 पुराने कैदियों को रिहा करने की घोषणा। भारत ने पाकिस्तान से बातचीत का न्योता ठुकराया। और बिहार में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत।
रात में पिए हैं 15 तारीख, पहले इन लोगों के पेट में दर्द का होना शुरू हुआ था और उसके बाद बस चक्कर आना और गिरना, फिर धीरे धीरे बिगड़ा था, सुबह में ज्यादा ही खराब हो गई, अस्पताल लाए।
दुनिया जहान में आज जिक्र होगा बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का।
लोग जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का दावेदार हैं, वो असल में हिंदुस्तान के साथ बहुत क्लोज हैं, उनकी कोलैबोरेशन है, उनकी फंडिंग है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी 3 किस्म की रही है।
ले चलेंगे आपको रियो ओलंपिक भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। तुर्की सरकार ने पिछले महीने हुई तख्तापलट की नाकाम कोशिश से पहले के 38,000 कैदियों को सशर्त रिहा कर दिया है। ये कदम हिरासत में लिए गए नए कैदियों के लिए जगह बनाने के लिए उठाया गया है। तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद करीब 23,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे जेल में जगह की कमी हो गई थी। हालांकि हत्या और यौन अपराध में कैद आरोपियों को रिहा नहीं किया गया है। भारत ने विदेशी सचिवों के स्तर की द्विपक्षीय वार्ता के पाकिस्तानी न्योते को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को सीमा पार आतंकवाद पर बातचीत करने का न्योता दिया था, जो कि कश्मीर के वर्तमान हालात का अहम पहलू है। हालांकि भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने इस्लामाबाद जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि कश्मीर को लेकर किसी भी मामले में पाकिस्तान को बात करने का हक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यूगिनी के मानुस द्वीप पर एक ऑस्ट्रेलियाई आवृजन हिरासत केंद्र को बंद करने की सहमति दे दी है दोनों देशों ने। पापुआ की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस केंद्र को लेकर अपने फैसले में कहा था कि आवृजन केंद्र में हिरासत में लोगों को लेना असंवैधानिक और गैरकानूनी था। ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक जो भी नाव के जरिए देश में पहुंचने की कोशिश करता पकड़ा जाता है, उसे मानुस द्वीप या नौरू के प्रशांत द्वीप भेजा जाता था। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में नौरू में हिरासत में लिए गए हजारों लोगों के साथ हिंसा, यौन शोषण और खुद को चोट पहुंचाने वाले हादसे की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। जेल विली, जो कि 2014-2015 में नौरू के शरणार्थी कैंप में किशोरों को पढ़ाया करती थी, उन्होंने बीबीसी को बताया।
What I saw was young men in the formative stages of their development.
मैंने देखा कि वो युवा जो अपने रचनात्मक विकास की शुरुआती अवस्था में थे, वो कैद में अपराधियों की तरह मिल रहे व्यवहार से बुरी तरह टूटे हुए थे। वो मुझसे पूछते थे कि हमने क्या किया है, हम यहाँ क्यों हैं। मेरे कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री और आवृजन मंत्री के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते थे कि जो खुद एक पिता है, वो दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय ओलंपिक समिति के प्रमुख पैट्रिक हिके को रियो पुलिस ने गैर कानूनी तरीकों से टिकटों की बिक्री की जांच के तहत गिरफ्तार किया है। हिके आयरलैंड के ओलंपिक परिषद के भी प्रमुख हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर संस्था के लिए दिए गए टिकटों की दलालों के जरिए कालाबाजारी करने का शक है। बीबीसी संवाददाता ने बताया कि फिलहाल हिके तबीयत ठीक न होने की वजह से अस्पताल में है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। सबसे पहले एक भूल सुधार, आज सोमवार नहीं बल्कि बुधवार है। शुरुआत करते हैं तुर्की से। तुर्की में नए कैदियों की जेल में जगह बनाने के लिए हजारों पुराने कैदियों को रिहा कर दिया गया है। माना जा रहा है कि पिछले महीने हुए तख्तापलट की नाकाम कोशिश में हजारों की तादाद में लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद तुर्की की जेलें बहुत ज्यादा भर गई थी और जेल प्रशासन के पास इतने कैदियों को रखने की जगह नहीं थी। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ वैभव श्रीवास्तव।
तुर्की अपनी जेल में बंद 38,000 कैदियों को कुछ शर्तों पर रिहा कर रहा है। ये सभी कैदी पिछले महीने हुई तख्ता पलट की नाकाम कोशिश से पहले गिरफ्तार किए गए थे। जुलाई में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद लगभग 23,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था और पहले से गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का कदम नए कैदियों की जेल में जगह बनाने के लिए उठाया गया है। तुर्की के कानून मंत्री बेकिर बोजदाग के मुताबिक सिर्फ उन लोगों को रिहा किया जा रहा है जिन्होंने अपनी सजा का 2/3 वक्त पूरा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या और यौन शोषण के आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इस्तांबुल से बीबीसी संवाददाता मार्क लोवन ने बताया कि इस कदम से ये साफ हो गया है कि हजारों लोगों के हिरासत में लिए जाने के बाद तुर्की का जेल प्रबंधन परेशानी में आ गया है और नए जेलों की जरूरत नजर आ रही है। 2002 में राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की AK पार्टी के सत्ता में आने के बाद से तुर्की के जेल में कैदियों की संख्या काफी बढ़ी है। इस साल कानून मंत्रालय के अनुसार तुर्की के 364 जेलों में 1,87,000 कैदी थे। ये संख्या जेलों की क्षमता से 4,000 ज्यादा थी। कानून मंत्री बेकिर बोजदाग ने यह भी कहा कि 1 जुलाई के बाद गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपी को रिहा नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये किसी अपराधों की क्षमा योजना के तहत नहीं किया गया है। तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद से ही सेना और प्रशासनिक दफ्तरों में से उन लोगों को ढूंढा और निकाला जा रहा है जो कथित तौर पर फतेहुल्ला गुलेन के समर्थक हैं। फतेहुल्ला गुलेन एक इस्लामी धार्मिक गुरु हैं जिन्हें तुर्की सरकार तख्ता पलट की नाकाम कोशिश का मुख्य आयोजक मानती है और जिन्होंने अमरीका में पनाह ली हुई है। तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद से लगभग 82,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। पिछले शुक्रवार ही लगभग 2,360 सैन्यकर्मी, दर्जनों प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी निष्कासित कर दिया गया था। 15 और 16 जुलाई को तख्ता पलट की कोशिश को रोकते हुए 240 लोग मारे गए थे जब सेना के विद्रोही दलों के सैनिक और टैंक इस्तांबुल और अंकारा में घुस आए थे।
तुर्की में 38,000 कैदियों की रिहाई।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
BBC हिंदी।
और अब कुछ खबरें भारत से। बिहार में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार जहां एक ओर मृतकों द्वारा शराब पीने की बात कह रहे हैं, वहीं प्रशासन का कहना है कि मौत का कारण बताना जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। पूरी घटना पर पटना से सुनिए मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार के गोपालगंज में पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद 13 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार की रात 6 लोगों की मौत हुई थी, बुधवार को यह संख्या 13 तक पहुंच गई। मृतकों में नगर और थावे थाने और इसके आसपास के इलाके के लोग शामिल हैं। मृतकों के परिवार वालों का कहना है कि इन लोगों ने शराब पी थी जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि प्रशासन ने अब तक शराब से मौत होने की पुष्टि नहीं की है। गोपालगंज के स्थानीय पत्रकार अवधेश कुमार राजन मारे गए लोगों के परिजनों से हुई बातचीत के हवाले से बताते हैं।
ये लोग गए थे 15 को कुछ मतलब शाम में, रात में पिए हैं 15 तारीख। पहले इन लोगों के पेट में दर्द का होना शुरू हुआ था और उसके बाद से बस चक्कर आना और गिरना, धीरे धीरे बिगड़ा था। सुबह में ज्यादा ही खराब हो गए, अस्पताल लाए, अस्पताल में इलाज चलने लगा, उसी इलाज के दौरान इनकी मौत शुरू।
वहीं गोपालगंज जिलाधिकारी राहुल कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह सामने आ पाएगी।
मृतकों की संख्या 13 है, जिसमें अभी पोस्टमार्टम के लिए हमारे पास 7 बॉडी थी, बाकी 6 बॉडी कल ही डिस्पोज कर दिया था लोगों ने। 13 में से 7 में पोस्टमार्टम में 6 का पोस्टमार्टम हो गया, 1 का भी चल रहा है। जैसे ही 7वां होता है उसके बाद सारा रिपोर्ट हम लोग के सामने आएगा कि रिकवरी हुई है, छापेमारी हुई है, अरेस्टिंग भी 4-5 लोग की हुई है और एक जगह से कुछ स्प्रिट और जैसी सारा महुआ गुड़ ये सब मिला है। खजुरबन्नी जगह है, पहले भी छापेमारियां हुई है, पहले भी वहां से रिकवरी हुई थी, वहीं से रिकवरी हुई है। कुछ लोगों ने बोला था, ओरली बोला था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या FSL रिपोर्ट में आ जाता है तभी हम लोग इसको कोरिलेट कर पाएंगे।
जिला प्रशासन के मुताबिक 6 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है जिनकी हालत स्थिर है। जिलाधिकारी ने जांच के लिए एक समिति भी बनाई है। बिहार में इस साल अप्रैल में लागू हुए शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से कथित मौतों के करीब 0.5 दर्जन मामले सामने आए हैं। जानकारों का कहना है कि ये घटनाएं इसका उदाहरण है कि राज्य सरकार ने अधूरी तैयारियों के बीच शराबबंदी लागू की है। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
उधर छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के एक जवान के भी घायल होने की खबर है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने की बात कही है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में पुलिस ने इस साल अभी तक माओवादियों के साथ कथित मुठभेड़ में 81 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। बुधवार को कथित माओवादियों के मारे जाने का यह आंकड़ा 85 पर जा पहुंचा। बुधवार को सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर डब्बा कुन्ना के जंगल में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के साथ कथित मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह बेहद उत्साहित नजर आए।
कल की घटना में 5 नक्सलियों को मारने में पुलिस ने सफलता मिली, तो छत्तीसगढ़ के जवान बहादुरी के साथ इसका मोर्चा ले रहे हैं।
रमन सिंह का कहना था कि माओवादियों के इलाके में योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षा बलों की इस तरह की कार्रवाई को एक बड़ी उपलब्धि की तरह देखा जाना चाहिए।
चिन्हित नक्सलियों को चिन्हित स्थान में जाके रात भर 2 रात घूम के मारने की क्षमता छत्तीसगढ़ पुलिस की, सीआरपीएफ की और हमारे कोबरा बटालियन की और एसटीएफ की बन गई है कि अब वो अंदर तक जा रहे हैं।
आमतौर पर बरसात के दिनों में बस्तर जैसे इलाके में पुलिस के ऑपरेशन लगातार बंद रहते हैं, क्योंकि बरसाती नदियों के कारण माओवादियों की तलाशी का काम बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन रमन सिंह के ताजा बयानों के बीच पुलिस ने बस्तर में माओवादियों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने की घोषणा की है। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने एक बार फिर से कहा है कि केवल हथियारों के बल पर बस्तर से माओवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। अजीत जोगी का कहना था कि सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर सक्रिय हुए बिना माओवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता।
माओवाद या नक्सलवाद के बारे में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण ही गलत है। केवल बलपूर्वक माओवाद समाप्त हो जाएगा यदि ऐसा सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर रमन सिंह, ये हमारे विचार के अनुसार बिल्कुल गलत है।
अजीत जोगी ने कहा कि सरकार को माओवादियों से बातचीत की पहल करनी चाहिए।
जब नेपाल में माओवाद खत्म हो सकता है और माओवाद के सबसे बड़े नेता प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री बन सकते, तो यहाँ के माओवादियों को क्यों मुख्य धारा में नहीं लाकर वो भी चुनाव लड़े, और यदि सच में उनकी नीतियाँ सही है तो वो जीतेंगे।
जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा माओवादियों के साथ संवाद के सुझाव के अपने राजनीतिक महत्व हैं, लेकिन सरकार अजीत जोगी के सुझाव को कितनी गंभीरता से लेगी, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। आलोक पुतुल, BBC, छत्तीसगढ़।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति और बदहाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान उसे अपना अटूट हिस्सा मानता है, लेकिन वहां की आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले पंजाबी लोग उन्हें अपना नहीं मानते। स्वराज के मुद्दे पर बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि भारत की शह पर अलगाववादी ताकतें वहां सर उठा रही हैं। आज़ादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का नाम लेकर मामले में नया मोड़ ला दिया। दुनिया जहान में निखिल रंजन इस बार बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष की दास्तान सुना रहे हैं।
दुनिया जहान।
पाकिस्तान के 35% से ज्यादा इलाके में बसे बलूचिस्तान की सरहदें दक्षिण पश्चिम में ईरान और उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम तक अफगानिस्तान से लगती हैं। उत्तर पूर्व में पाकिस्तान के कबायली इलाके, तो दक्षिण में अरब सागर है और दक्षिण पश्चिम में एक बड़ा हिस्सा सूबाए सिंध और पंजाब से जुड़ा है। सिल्क रूट से कारोबारियों और यूरोप से आने वाले हमलावरों को अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता इसी बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। बलूच, हजारा, सिंधी, पंजाबी से लेकर उज़्बेक और तुर्कमेनियाई लोगों की दुनिया जिस जमीन पर बसी है उसी के नीचे खनिजों का भारी खजाना भी है। बावजूद इसके करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बदहाली, गरीबी और सरकार की अनदेखी का शिकार है। अपनी जमीन पर अपने शासन के लिए यहाँ संघर्ष का इतिहास पुराना है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में वरिष्ठ पत्रकार सिद्दीक बलोच,
ये जिस दिन से ब्रिटिश आए थे 1840 में, उस वक्त से जो है वो रेजिस्टेंस है, ऑफ एंड ऑन चलती रही है। जब पाकिस्तान बना तो ये 5वां मिलिट्री ऑपरेशन है, तो ये सिलसिला चल रहा है। वो इसकी वजह ये है कि लोगों ने तस्लीम नहीं किया ब्रिटिश सिस्टम को भी, और इनके साथ भी कोई फैसला नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हो सका। इट इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस।
पाकिस्तान बनने पर बहुत हाँ ना के बाद बलूचिस्तान की सरहदें तो देश में शामिल हो गई, लेकिन शिकायतें बाकी रहीं। हालांकि इलाके के नेता पाकिस्तानी शासन तंत्र में शामिल हुए, चुनाव लड़े, उसके संविधान को स्वीकारा, यहां तक कि बलूचिस्तान में विरोध की सबसे बड़ी आवाज रहे बलूच नेता अकबर खान बुख्ती भी सूबे के मुख्यमंत्री और गवर्नर रहे। ऐसे में कोई हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना अटूट हिस्सा मानता है। स्थानीय पत्रकार जान अचकचई,
बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान की एक आजाद असेंबली है, वहाँ पे सूबाई हुकूमत है, इलेक्शन होते हैं। कुछ लोग जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का दावेदार हैं, वो असल में हिंदुस्तान के साथ बहुत क्लोज हैं, उनकी कोलैबोरेशन है, उनकी फंडिंग है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी 3 किस्म की रही है 2009 में। एक ये सब एथनिक नेशनलिस्ट के साथ आप सेपरेटिस्ट कहते हैं, जो इस वक्त जो है खत्म हो चुकी है। दूसरी वो टेररिज्म जो रिलीजियस टेररिस्ट ऑफिस थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है। तीसरी इंटरनेशनल टेररिज्म है, इंटरनेशनल टेररिज्म अभी भी है जो सॉफ्ट और हार्ड टारगेट दोनों को हिट करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ना पाकिस्तान की कोई फौज है, ना यहाँ पे कोई फौजी ऑपरेशन है, ना यहाँ पे कोई मास अपराइजिंग है जिस तरह कश्मीर में है। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ बड़ा बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, गल्फ के साथ बॉर्डर है, बॉर्डर कंट्रोल में मुश्किलात की वजह से सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे जो है बिलखसूस एक चैलेंज रही है रियासत के लिए, पाकिस्तानी स्टेट के लिए।
जितनी ऊर्जा पाकिस्तान ने इस इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करने में खर्च की है, उसका बहुत छोटा हिस्सा ही यहाँ के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने की मुहिम को दिया। नतीजा ये हुआ कि दिलों के बीच दूरियां बढ़ती गईं और पाकिस्तान बार बार यहाँ की आवाम को अपनी ताकत दिखाता रहा। 1948, 1958, 1962, 1973 और 2002 में यहाँ पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाइयाँ हुईं। इनमें भारी हथियारों का इस्तेमाल और हवाई हमले भी किए गए। 2006 में बलूच नेता अकबर बुख्ती को उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। सैन्य प्रमुख से राष्ट्रपति बने परवेज मुशर्रफ ने तब इसे जायज ठहराते हुए कहा था,
कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुख्ती का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में। आप मुझे बताएं कि एक शख्स है जिसके लोग 65 फरारी कैंप पूरे बलूचिस्तान में बिखरे हुए, कभी चाइनीज को मार देते हैं, कभी कोई और लोगों को मारते हैं पकड़ के, और उनको अपने आप को बीए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से अलग होने की सोच रहे हैं। हर रोज गैस पाइपलाइन को रॉकेट मार के उड़ा देते थे, इलेक्ट्रिक पाइलॉन मार के उड़ा दिया, बिजली खत्म हो गई, रेलवे लाइन उड़ा दी या ब्रिज उड़ा दिया। एक दिन में सुई प्लांट उसके ऊपर 450 रॉकेट फायर कर दिए। गवर्नर सुई पे लैंड करने वाले थे तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग को उड़ा दिया, चेक पोस्ट लगा लिए मेरा बुक्ति के साथ। आप मुझे बताएं, ये होता है किसी ताकतवर इंडिपेंडेंट मुल्क में ऐसी कार्रवाई होती है? किसी की क्या जरूरत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं?
हजारों की तादाद में लोग यहां से लापता हैं और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं कि वो कहां गए। गायब हुए लोगों के परिजन सरकार पर ही उन्हें अगवा करने का आरोप लगाते हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार स्थानीय लोगों को ही यहां गड़बड़ी फैलाने का जिम्मेदार मानती है। जानकार बताते हैं कि बलोच विद्रोहियों ने कभी सरकार के खिलाफ किसी बड़ी चरमपंथी कार्रवाई को अंजाम दिया हो ऐसा याद नहीं आता। सिद्दीक बलोच,
بلوچ لیڈرشپ نے وائلٹ نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ کے خلاف انہوں نے جنگ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں ہے کم سے کم. تو یہ جو ہے یہ ون وے ٹریفک ہے کہ یہ خود ہی سوچتے ہیں، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، خود ہی پتہ نہیں کس وجہ سے وہ ایک دم سے کاروائی شروع کرتے ہیں. نواب مفتی صاحب گھر میں بیٹھے تھے، اس پر حملہ کر دیا پرویز مشرف نے کہ اس کی شکل پسند نہیں ہے.
بیتے سالوں میں پاکستان نے یہاں آرتھک گتیویدھیوں کو تیز کرنے کی بھی کوشش کی ہے. حال ہی میں چین اور ایران کے ساتھ بڑے قرار ہوئے ہیں جن میں گوادر کے بندرگاہ پر بڑی سویدھائیں لانے کے ساتھ ہی چین پاکستان آرتھک کوریڈور بھی بننا ہے. اس کے علاوہ ایران سے بڑی گیس پائپ لائن کی بھی یوجنا ہے، لیکن استھانیہ لوگ اس سے بھی ناخوش ہیں. وہ مانتے ہیں کہ ان کی شکایتوں پر کام ہونے کی بجائے ان کے ادھیکار چھینے جا رہے ہیں.
چھوٹی سی بات ہے، آٹونامی ہے کہ بھئی ہمارا صوبہ ہے، ہم کو بس سیلف رول کی بات چاہیے. وہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر بھی دوسروں کے پاس چلا گیا، جھاڑو لگانا بھی دوسروں کے پاس چلا گیا، پولیسنگ لوکل پولیسنگ بھی کسی اور فیڈرل گورنمنٹ نے لے لی ہے، تو اس کے بعد تو کچھ بچا نہیں ہے نا. پورے فیڈرل گورنمنٹ ہے، بلوچستان کی نمائندگی زیرو ہے. کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کہیں جائیں، کوئی فیڈرل سیکورٹی، کوئی کلرک، کوئی منشی فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سارے کے سارے جابس جتنے بھی ہیں وہ تلاش کر کے نان بلوچ کو دیتے کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ مطلب شکایتیں تو بہت ہیں.
بلوچستان میں اب بھرشٹاچار، جاتیہ ہنسا اور الگاؤواد کو لے کر سنگھرش ہے، لیکن پاکستان اسے بھارت کی کارستانی بتاتا ہے. بھارت کی پرمکھ خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ اینالیسس ونگ پر بلوچستان کی الگاؤوادی طاقتوں کو سمرتھن اور پیسہ دینے کی بات کہی جاتی ہے. بھارت اب تک اس سے انکار کرتا آیا، لیکن 15 اگست کو لال قلعے سے گونجتی بھارت کے پردھان منتری کی آواز میں اس بار وہ بول سنائی پڑے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنے گئے.
پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے، گلگت کے لوگوں نے، پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے، وہاں کے ناگرکوں نے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے.
راشٹریہ سرکشا سلاہکار اجیت ڈوبال نے بھی ایک بار کہا تھا کہ دیش کی رکشا نیتی میں سرکشاتمک حملہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اگر دوبارہ ممبئی جیسا حملہ ہوا تو بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے گا.
Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan.
اکبر بگتی کے پوتے ابراہم داغ بگتی بیتے کئی سالوں سے سوانرواست ہو کر سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہیں. موجودہ وقت میں انہیں بلوچ ورودھ کی بڑی آواز مانا جاتا ہے. بگتی نے بھی بھارتی پردھان منتری کا آبھار جتایا ہے اور آگے سمرتھن کی مانگ رکھی ہے.
I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib.
میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلوچ مدے کی بات کی. میں پردھان منتری مودی، بھارت کی میڈیا اور پورے بھارت کے لوگوں کا پورے بلوچ لوگوں کی اور سے آبھار جتاتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف اس مدے پر بولیں گے بلکہ بلوچستان کی آزادی کی مہم کو بھی سمرتھن دیں گے.
بھارت بلوچستان کا سمرتھن کشمیر کا جواب دینے کے لیے کر رہا ہے، یا پھر وہ سچ مچ بلوچستان کو لے کر سہانوبھوتی کا بھاو رکھتا ہے اور اس کے ادھیکاروں کی لڑائی میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس وقت ٹھیک ٹھیک یہ بتا پانا مشکل ہے. آنے والا وقت شاید اس کا جواب دے سکے. نکھیل رنجن، بی بی سی، دلی.
تو یہ تھی نکھیل رنجن کی رپورٹ. آپ کو کیسی لگی ضرور لکھیے گا. پاکستان سے بات چیت کے سوال پر بھارت نے کڑا رخ اپنایا ہے. بات چیت کے لیے پاکستان کے نمنترن کے جواب میں بھارت نے کہا ہے کہ بھارت بات چیت کے لیے تبھی تیار ہوگا جب بات چیت کشمیر میں پھیلائے جا رہے آتنکواد پر ہو. 3 دن پہلے ہی پاکستان کے ودیش سچیو اعجاز چودھری نے بھارت کے ودیش سچیو کو لکھت نیوکتا بھیج کر انہیں کشمیر پر چرچا کے لیے پاکستان آمنترت کیا تھا. اس سمے بھارت کے ودیش سچیو ایس جے شنکر فورن کورسپونڈنٹ کلب کو سمبودھت کر رہے ہیں. وہاں پر ہمارے سنواداتا سلمان راوی موجود ہیں. چلیے چلتے ہیں سلمان راوی کے پاس. سلمان، آپ سن رہے ہیں، اب تک کیا کہا ہے ودیش سچیو نے؟
دیکھیے، ابھی تو چل ہی رہی ہے، کافی لیٹ شروع ہوا، اور سبرمنیم جے شنکر جو ودیش سچیو ہیں وہ آئے، وکاس سوروپ جو پروکتا ہیں ودیش منترالے کے. اور پچھلے 2 سالوں کا جو ڈپلومیٹک سفر رہا بھارت کا، اس پر وہ بول رہے ہیں باری باری سے، چاہے وہ अफ्रीकी देशों में जो भारत का रोल है और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है उस पे, फिर पाकिस्तान के साथ किस तरह का एंगेजमेंट हुआ जाए, किस तरह का डायलॉग रखा जाए बदली हुई परिस्थितियों में। टेररिज्म जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, चूंकि देर से शुरू हुआ और अभी ये चलेगा थोड़ी देर, उसके बाद वो सवाल लेंगे जो यहाँ पे जमा है संवाददाता। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अखबारों के भी हैं और दूसरे अखबारों के भी हैं, दक्षिण एशियाई जो कंट्रीज हैं उसके अखबारों के सदस्य मौजूद हैं या फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में। तो जो नटशेल में जो सफर रहा भारत का डिप्लोमेटिक और प्रधानमंत्री के जो दौरे रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों या मिडिल ईस्ट के, उस पर फोकस करते हुए वो अभी भी बोल ही रहे, जैसे आप सुन पा रहे होंगे पीछे से आवाज,
अभी तक जो पाकिस्तान से बातचीत के बारे में कोई उनकी तरफ से टिप्पणी नहीं आई है, शायद सवालों में आए।
जी बिल्कुल, सवालों में वो आएगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि अब जब वो सवाल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्वलंत मुद्दा है और पत्रकार इस बात को जरूर पूछेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सलमान रावी आपका। और अब रियो, रियो से ताजा खबर यह है कि भारत के दो पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोकट अपने अपने मुकाबले जीत गए हैं और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारत के किदांबी श्रीकांत चीन के लिन डैन से बहुत कड़े मुकाबले में क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। एक और हार्ट ब्रेक भारत के लिए, क्यों नोरिस?
जी हाँ, हार्ट ब्रेक कह सकते हैं, लेकिन साथ में मेरा ख्याल ये भी खुशी है कि कम से कम खेले अच्छा, यानी अगर कोई खिलाड़ी खेलते हुए हारता है तो इतना मलाल नहीं होता, क्योंकि वो श्रीकांत काफी अच्छा खेले और तीसरे गेम में 21-18 तक लिंडन जैसे प्लेयर को वो ले जाएं, तो मैं सोचता हूँ कि ये हार का इतना मलाल नहीं होना चाहिए रियांत का।
लेकिन नॉरिस पहले सेट में बहुत सबड्यूड थे, उन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाने दिया, बहुत एग्रेसिव नहीं थे श्रीकांत।
हाँ, एग्रेसिव क्या बल्कि इरेटिक भी थे, गलतियां भी कर रहे थे और इवन सेकंड गेम में भी 3 लगातार ड्रॉप जो वो आसानी से शायद उठा सकते थे वो नहीं उठाए, तो ये एक बड़ा अजीब सा लग रहा था। हालांकि हमने गोपी से पूछा, गोपी ने कुछ बताया नहीं बाद में, क्योंकि वो शायद अंदर चले गए थे, खास बात नहीं हो पाई, तो ये बड़ा अचंबा लग रहा था। जैसे कहते हैं कि पैचेस में अच्छा और बुरा खेल रहे थे, जो बुरा खेल रहे थे वो एकदम बुरा था, तो अच्छा खेल रहे थे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि उनका गेम अच्छा रहा और एक दफा को तो लगा जीत जाएंगे। जो हॉल में जो मुझे लगता है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि हर तरफ भारत भारत हो रहा था, पहली बार ही ओलंपिक में हमें एहसास हुआ कि यहाँ भारतीय भी रहते हैं और झंडे लेके बैठे हुए थे और श्रीकांत चिल्ला रहे थे, तो बहुत अच्छा माहौल था और शायद श्रीकांत इससे भी थोड़ा और इंस्पायर होके मेरे ख्याल और अच्छा खेले होंगे। थोड़ा
तीसरे सेट में शायद जब स्कोर 13-12 के आसपास हुआ, वहां से पकड़ धीमी शुरू हुई श्रीकांत की।
जी, वो एक के बाद इरेटिक बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा, मतलब कई 2-3 ड्रॉप उसी गेम में उन्होंने ऐसे मिस करे जो श्रीकांत के लिए मिस करना मेरे ख्याल है हॉरिबल जैसे वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए वो था।
तो ये तो रही बैडमिंटन की बात, लेकिन अब आपका पसंदीदा खेल कुश्ती, जहां भारत की दो पहलवान बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और फोकट को तो हम लोग देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित थे जिस तरह से उसने हराया है अपने प्रतिद्वंदी को।
जी हाँ, मैंने आपसे पहले भी 2-3 ट्रांसमिशन में बार बार बोला है कि सारे भारत के कोच जो हैं वो भी, हम तो खैर इमोशनल हो सकते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। हालांकि आज उनकी जो बाउट थी एलिना से रोमानिया की, वो इतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है साक्षी ने जो हराया है योहाना मैक्सन को, योहाना मैक्सन स्वीडन की बहुत अच्छी एक रेसलर है, एक रेसलिंग के परिवार से आती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत टॉप क्लास है और दोनों प्री क्वार्टर फाइनल में हैं। तो अब ये कहना कि हम डराते हैं लोगों को कहकर कि मेडल की उम्मीद है, लेकिन मेरी नजर जरूर रेसलिंग के मेडल पर है।
तो चलिए साहब, आपकी इच्छा पूरी हो और पदक का सूखा खत्म हो और साक्षी मलिक और विनेश फोकट और आगे जाएं, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद नॉरिस प्रीतम आपका। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। तुर्की सरकार ने पिछले महीने हुई तख्तापलट की नाकाम कोशिश से पहले के 38,000 कैदियों को सशर्त रिहा कर दिया है। ये कदम हिरासत में लिए गए नए कैदियों के लिए जगह बनाने के लिए उठाया गया है। भारत ने विदेशी सचिवों के स्तर की द्विपक्षीय वार्ता के पाकिस्तानी न्योते को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को सीमा पार आतंकवाद पर बातचीत करने का न्योता दिया था। हालांकि भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने इस्लामाबाद जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि कश्मीर को लेकर किसी भी मामले में पाकिस्तान को बात करने का हक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी पापुआ के मानुस द्वीप पर एक ऑस्ट्रेलियाई शरणार्थी केंद्र को बंद करने के लिए सहमत हो गए हैं। पापुआ की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस केंद्र को लेकर अपने फैसले में कहा था कि हिरासत में लोगों को लेना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो का संचालन किया हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।